ओम शांति। सुबह से अनेक लेसन सुनते सुनते कहीं आप थक तो नहीं गए? थक गए कि रिफ्रेश हो गए? ये तीन दिन आप एक एजुकेशन सेंटर में आए हैं, या यूं कहो कि स्कूल में आए हैं पढ़ाई पढ़ने, कुछ हायर एजुकेशन लेने। और ये ऐसी एजुकेशन है जो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करती है, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी ऐसे एकदम रिलैक्स होकर। आपको अलग अलग एक्टिविटीज भी कराएंगे, कल के सत्र में बहुत अच्छे एक्टिविटीज भी है। अभी जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है पैनल डिस्कशन, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। तो ये सारी चीजें हमारे सोल को अपलिफ्ट कर रही है। अभी जैसे हम गीत सुन रहे थे, गाइए गुणगान प्रभु के, तो भक्ति काल से हम ईश्वर के गुण गाते हैं, महिमा कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्त भावनाओं को ईश्वर के आगे रखते हैं। अनेक तीर्थ स्थानों पर हम जाते हैं, हमें एक तलाश है। किसकी तलाश है? उस ईश्वर की। सभी मनुष्य परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो भी कामनाएं हैं वो भगवान सुन ले, पूरी कर दे। तो एक खोज है हमें परमात्मा की। आज के सत्र में हम देखेंगे कि वो ईश्वर कौन है, परमात्मा का सत्य परिचय क्या है। अगर आत्मा के बारे में हम सोचे तो पहले साइंस भी कहती थी कि बॉडी इज मेड अप ऑफ मैटर, पर आज कितने ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए हैं, साइंस ने बहुत रिसर्च किया है इस पर। तो आज क्या कहते हैं वैज्ञानिक लोग कि बॉडी के अलावा एक एनर्जी है जो बॉडी को चला रही है, नियंत्रित कर रही है, जिसको हम रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो जहां आत्मा की बात है तो हमने बहुत अच्छी तरह से उसको जान लिया, समझ लिया, और पहले भी पता था कि एक एनर्जी है हमारे अंदर जो इस शरीर को चला रही है। लेकिन परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, और इतनी सारी बातें सुनते सुनते क्या चीज माने हम, कहां अपने मन को स्थिर करें। इसलिए भक्ति में कहते हैं कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, है ना? ऐसा है ना? तो ईश्वर के प्रति बहुत सारी मान्यताएं हैं। कई कहते हैं कि प्रकृति ही परमेश्वर है, कई कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है। हम शास्त्रों में भी सुनते आए हैं कि कण कण में भगवान है, सर्वव्यापी है। कई बिलीव करते हैं कि ईश्वर निराकार है, न रूप है न आकार है। कई कहते हैं किस साकार में परमात्मा है, कोई ये जो सभी इष्ट है, देवताएं हैं, यही परमात्मा का रूप है। और कुछ लोगों की ये मान्यता है कि देर इज नथिंग लाइक गॉड, इफ देर इज जस्ट प्रूव इट। तो कुछ लोग ऐसा समझते, तो आखिर परमात्मा है कौन? एक बार है ना, पांच सूरदास थे जो नेत्रहीन थे, उनको हाथी घर में भेजा देखने के लिए कि हाथी कैसा है। तो किसी ने हाथी की पीठ पर हाथ रखा और कहा हाथी तो दीवाल जैसा है। किसी ने पैरों पर हाथ रखा तो कहा हाथी तो पिल्लर जैसा है, बहुत बड़ा पिल्लर है। किसी ने पूंछ को हाथ लगाई तो कहा हाथी तो गोल गोल रस्सी जैसा है। किसी ने कानों पर हाथ लगाया तो कान तो हिल रहे थे, तो लगा पंखे जैसा है, सूप जैसा है। और एक सूरदास ने सूंड को हाथ लगाया तो कहा ये तो कैसा है, ये तो बहुत बड़ा पाइप जैसा है जो हिलता डुलता है। और सभी आके आपस में डिस्कस करने लगे, बात करने लगे, नहीं नहीं हाथी ऐसा नहीं, दीवाल जैसा है, नहीं ऐसा नहीं, रस्सी जैसा है। एक छठा सूरदास वहां पहुंचा तो पांचों उसको बताने लगे कि हाथी तो ऐसा है। अब एक व्यक्ति जो देख सकता था वो वहां पहुंचा, उनकी कंफ्यूजन सुनने लगा, कहा कि हाथी में ये सारी बातें हैं, हाथी तो हाथी है, पिल्लर नहीं, ये तो पैर है, ये तो पूंछ है। तो हाथी क्या है वो समझ ही नहीं पाए क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। ऐसे परमात्मा को जानना भी एक पहेली है। ऐसा नहीं है कि हर बातों को हमें स्वीकार करना ही है, पर आज हम सभी बहुत समझदार हैं, तो हम खुद भी जज कर सकते हैं कि ईश्वर कौन है, परमात्मा का सत्य परिचय क्या है। ईश्वर उस शक्ति को कहा जाता है जो सर्वधर्म माननीय हो, जिसको हर धर्म वाला स्वीकार करे। ही शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड। तब तो हम कह सकते हैं कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है, सभी मनुष्य का पिता है। परमात्मा वो शक्ति है जो सर्वधर्म माननीय हो, वो सर्वोच्च है। उन्हें हम माता, पिता, बंधु, सखा, रक्षक कहते, शिक्षक कहते, सद्गुरु कहते हैं, दाता कहते हैं। वही सुप्रीम है, सबसे ऊंचे हैं। तो जो सर्वोच्च है वो परमात्मा है, वो सर्वोपरे है। हम मनुष्य आत्माएं अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र। परमात्मा इन सब चक्र से परे है। जन्म है तो मृत्यु है, जन्म है तो ये शरीर है, देह है, और अगर देह है तो देह के संबंधों का चक्र। देह है तो कर्म है, और अगर कर्म कर रहे तो उसका फल भी है, तो कर्म के फल का चक्र। अब कर्म के फल में अच्छे बुरे कर्म होते हैं, तो पाप और पुण्य का चक्र। और जहां पाप और पुण्य है, कर्म का फल है, तो वहां सुख दुख का चक्र भी है। तो हम अनेक चक्कर लगाते आए हैं, जन्म मृत्यु के साथ ये सारे चक्र हैं जिसमें हम बंधे हुए। परमात्मा इन सब चक्र से ऊपर है, परे है, वो शक्ति है। और परे होते हुए वो सर्वज्ञ है, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, इसलिए उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वो हम सभी मनुष्य आत्माओं को इस धरती पर आकर दिव्य चक्षु देते हैं, अंतर आत्मा का नेत्र जागृत करते हैं, इसलिए उन्हें त्रिनेत्री कहा गया है। वो त्रिमूर्ति के रचयिता है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता है, और इसीलिए ये सारा ज्ञान है, इसलिए वो सर्वज्ञ है, ये सारे सृष्टि के ज्ञाता है। सर्व गुणों के भंडार कहा जाता है, परमात्मा वो शक्ति है जो सभी गुणों में अनंत है, इसलिए उनके एक एक गुणों की तुलना सागर से की जाती है। जैसे सागर में पानी अथाह होता है, कभी न खुटने वाला, ऐसे परमात्मा की गुणों की महिमा है कि प्यार का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो गुणों के भंडार है और उनकी महिमा में मां शारदे ने कहा है कि सागर को शाही बना लो, जंगल को कलम बना लो, धरती को कागज बना लो, और स्वयं सरस्वती मां बैठकर लिखे तो भी उनकी महिमा, उनका ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता। तो परमात्मा गुणों के भंडार है। ये पांच बातें जिनमें है उस शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। अगर प्रकृति में परमात्मा है तो आज हम देखते हैं कि पुरातन काल में शास्त्रों में बताया गया है कि एक ऐसा युग था जहां वनस्पतियां अपने आप आते थे, बहुत सुंदर वातावरण था, बाहरी मौसम रहता था, जहां हीरे सोने के महल हुआ करते थे, प्रकृति सौंदर्य था। धीरे 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 परिवर्तन होते होते आज हम देखते हैं कहां प्रकृति का प्रकोप है, तो कहां बाढ़ है, तो कहां अकाल है। तो क्या ऐसे परिवर्तन प्रकृति में परमात्मा बसा हो सकता है? हो सकता है? कहते हैं कि ह्यूमन वाइब्रेशंस का प्रकृति पर बहुत असर होता है। जब ह्यूमन बीइंग्स देवताएं मिसल थे तो बहुत अच्छे विचारधारा थी और इसीलिए वातावरण बहुत अच्छा था, और जैसे जैसे हमारे विचारों में कंफ्यूजन आता गया, दुख बढ़ता गया, स्ट्रेस बढ़ता गया, तो ये चीजों का प्रभाव प्रकृति पर भी हुआ है। तो हमारे विचारों से अगर प्रकृति पर इतना असर हो रहा है तो क्या प्रकृति परमात्मा है? कि परमात्मा की रचना है। हम गीत में क्या कहते हैं, कौन चित्रकार है, हरी हरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन, फिर हम कहते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सुंदर प्रकृति को देखकर पुराने जमाने में ये गीत, आज हम क्या कहते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, ये कहते हैं। तो क्या प्रकृति में परमात्मा हो सकता है? प्रकृति भी परमात्मा की रचना है। अहम ब्रह्मस्मि कहा जाता है कि आत्मा सु परमात्मा। हम मंदिरों में जाकर क्या कहते हैं कि आप मात पिता हो, हम बालक आपके, आपकी कृपा से सुख घनेरे। तो वो हमारे मात पिता है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा कैसे परमात्मा हो सकती? अगर हम ही परमात्मा है तो हम किसको बुला रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि मात पिता हमारे, किसको बोल रहे हैं? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो किसको पुकारा जा रहा है? परमात्मा कोई प्राप्त करने वाली पोजीशन या डिग्री नहीं है कि हम पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बने ऐसे आत्मा परमात्मा बन जाएगी तपस्या से पढ़ाई करके। आत्माएं परमात्मा को याद कर श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा बन सकती है। इस धरती पर कई धर्मात्माएं होकर गए, कई देवी देवताएं होकर गए, तो हम कहते हैं अनेक देव आत्माएं होकर गए, लेकिन परमात्माएं शब्द कभी नहीं कहते, वो ग्रामर में नहीं बैठता। इंग्लिश में भी कहते हैं कि देर आर मेनी गॉड एंड गॉडेसेस बट देर इज ओनली वन गॉड, और जब वो गॉड गॉडेसेस लिखते हैं तो स्मॉल जी लिखते हैं, लेकिन जब गॉड लिखा जाता है तो कैपिटल जी होता है, कि गॉड माना कोई अलग है, देवी देवताएं अलग है। तो आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? मैटर मैटर से मिल सकता है, पर आत्मा कैसे परमात्मा से मिल सकती है? पशु पशुओं का पिता भी पशु, एक गाय का बच्चा गाय बच्चे को जन्म देती है तो गाय का बच्चा गाय कहलाएगा, एक कबूतर का बच्चा कबूतर होता है, तो वो पिता है और वो बच्चा है, एक रिलेशन है। तो ऐसे हम आत्माएं हैं और हमारा पिता वो परमात्मा है। जैसे आत्मा प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है, तो हम आत्माएं उस परमात्मा से मिल नहीं सकते। हम ईश्वरीय संतान जरूर है, लेकिन हम ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं है जो जहां जाकर समा जाएंगे। हमारी अपनी वास्तविकता है, अपना अस्तित्व है। सुबह आत्मा के लेसन में आपने समझा इस बात को कि हर एक के अंदर एक चैतन्य शक्ति है, तो हमारी अपनी एंटिटी है, वैसे परमात्मा का अपना अस्तित्व है। हर एक मनुष्य किसी में समा नहीं सकता, मैं तुझ में समा जाऊं गीत तो बना दे, पर क्या आत्मा समा सकती है? नहीं। आप कहेंगे नहीं, कहीं एक व्यक्ति का नाम भी गलत पुकार लिया अगर हमने बाय मिस्टेक, रमेश भाई को अगर हमने कुछ प्रकाश भाई बोल दिया तो कहेंगे नहीं बहन जी मैं तो रमेश हूं प्रकाश नहीं हूं, और प्रकाश भाई को कुछ और बोल दिया तो कहेंगे नहीं बहन जी मेरा नाम ये है। तो नाम भी थोड़ा सा गलत होता है तो हमको अनइजी फील होता है, हम कहते नहीं मुझे सही नाम से ही पुकारो, मेरी ओरिजिनलिटी ये है। तो जब हम इंसान इंसान के नाम नहीं मिल सकते हैं, न तन मिल सकता है, आत्मा कैसे समा सकती है और आत्मा परमात्मा में कैसे समा सकती है? तो आत्माएं डिफरेंट है, हर एक की आत्मा अपनी है, ऐसे परमात्मा एक डिफरेंट शक्ति है जो एक है। अब ये बातें हमें अच्छी तरह से समझनी है कि आखिर वो परमात्मा कौन है। पुत्र पिता का अंश होता है, हम कहते हैं हाँ इनके पिता की जीन्स आए मेरे अंदर, और इसीलिए जो है कि पिता जैसे मैं बिहेव करता हूं, लेकिन आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, समा नहीं सकती। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, वंश है। इसीलिए कहा जाता है कि वो पिता है और हम पुत्र हैं, वो मालिक है, हम तो साधारण मनुष्य है, वो दाता है, हम तो लेने वाले हैं। ये हमेशा अक्सर ये शब्द हम मंदिरों में जाकर कहते हैं। तो वो परमात्मा एक दिव्य शक्ति है, हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता है। कहते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म तत्व को ईश्वर समझते हैं कई, और जो तत्व ज्ञानी होते हैं वो उस ब्रह्म महतत्व में अपने मन को साधने की कोशिश करते हैं, एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। वो लोग अलग अलग प्रकार के कलर के आसमान देखते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के चंद्रमा को देखकर अपने मन को वहां स्थित करते हैं और सोचते हैं कि बहुत शांति शक्ति मिलेगी, कोई ऐसा स्थान है जहां प्यूरिटी है। तो ब्रह्म तत्व जिसको छठा तत्व कहते हैं, ब्रह्म लोक परलोक दिव्य लोक कहते हैं, जिसको परम धाम शांति धाम मोक्ष धाम निर्वाण कहा गया है, रूहानी दुनिया कहा गया है, सातवां आसमान कहा गया है, हेवनली अबोर्ड कहते हैं क्रिश्चियन धर्म के लोग, तो कई नाम से उस स्थान को पहचाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है उर्द्वमूल, अर्थात जो ऊपर रहने वाला, जो मूल परमात्मा है, उसका महत्व है। और वो परमात्मा बीज है और सारा वृक्ष आत्माओं का नीचे है, परमात्मा ऊपर है, बीज ऊपर है और वृक्ष नीचे है। उनकी महिमा में कहते हैं कि पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर, तो ब्रह्म ही ईश्वर, ये राइट है, या पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर राइट है। हमेशा हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला भगवान आओ नीचे, आओ दर्शन दो, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं, गीत भी बना हुआ है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा आजा धरती पर आजा, आजा और हमें दर्शन दे। मंदिर में जाकर हम जोर जोर से घंटा बजाते हैं, कहते भगवान कहां भी हो आओ ऊपर वाला। कोई मनुष्य कोई गलत कर्म करता है तो कहते ऊपर वाला देख रहा है, माना ऊपर कोई शक्ति है जो देख रही है। तो पार ब्रह्म में रहने वाला वो परमात्मा है। फिर ये मान्यता है कि कण कण में भगवान है, भगवान सर्वव्यापी है। देखिए अगर कण कण में है तो मिट्टी में, पत्ते में, पत्थर में, फिर कोई कूड़ा कचरा, सब में भगवान होगा, तो क्या ये सही है? हम मनुष्य को कोई कहे कुछ कहेंगे तो कितना बुरा लगेगा, तो ईश्वर को कैसे कह सकते हैं? पशु पक्षी में परमात्मा है, क्या ये सच है? मगरमच्छ में भी है, मगरमच्छ से हम कितना डरते हैं, सांप में भी है, सब में है, तो हम कितना डरते हैं। सांप को हम पूजा जरूर करेंगे पर सांप आ जाए इधर तो, मगरमच्छ आ जाए तो कितना डर जाएंगे। तो क्या उन सभी में परमात्मा है? श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, चौथे अध्याय में बताया गया है कि जब जब भारत में ऐसी धर्मग्लानी होती है तब तब मैं आता हूं, अपना वायदा निभाता हूं। तो परमात्मा अगर कण कण में बसा है तो यही है ना, फिर कहां से आता हूं? पर भगवान ने कहा है कि मैं आता हूं, आकर अधर्म का विनाश कर सत धर्म की स्थापना करता हूं। वास्तव में सर्वव्यापी का ज्ञान गलत नहीं है, बहुत सही लिखा है, लेकिन हमें उसे सही रीति से समझना भी चाहिए। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि ने लिखा है बहुत सत्य भाव बात है, लेकिन उन्होंने किस भावना से लिखा, उसके पीछे विवेक क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। जब ऋषि मुनि समाधि अवस्था में बैठते थे, साधना तपस्या करते थे, तो वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते थे। दे वे एबल टू ट्रैवल थ्रू टाइम, और इसलिए वो उन्होंने देख लिया था कि ऐसा काल आएगा जहां मनुष्य ऐसे कर्म, पाप कर्म करना शुरू कर देगा। तो उन्होंने कहा कि हर एक के अंदर अच्छाई देखो, हर एक के लिए शुभ भावना देखो, हर एक के अंदर भगवान देखो, हर एक के अंदर एक भगवान देखो, माना अच्छाई देखो, गुण देखो। फिर कहा कि भगवान सब जगह है, देख रहा है, देखना, कुछ गलत मत करना, क्योंकि भगवान देख रहा है। फिर कहते अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है, वो हजार आंखों से हर पल हर वक्त हमें देख रहा है, किसी न किसी के द्वारा हमें मदद कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, परंतु इसके पीछे भाव क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा बच्चा होता है, आपके घर में छोटा बच्चा होगा, पोता होगा, अगर दरवाजे से बाहर चला जाए रोड में, जहां गाड़ियां आ रही हो, या रेलवे प्लेटफॉर्म में इधर उधर घूम जाए तो आप कहेंगे नहीं रुक जा, देख बाहर कुत्ता है, देख बाहर कोई आएगा डंडे मारेगा, या बाहर भूत खड़ा है, तो बच्चा दरवाजे तक तो दौड़ता है लेकिन सोचता है कोई तो बाहर खड़ा है, वापिस अंदर आ जाता है, माँ को पकड़ लेता है, पिताजी के गले लग जाता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, समझदार बन जाता है, दरवाजे से बाहर आराम से रोड में चला जाता है, आराम से प्लेटफॉर्म में चला जाता है, फिर वो समझने लगता है, अरे बचपन में तो मैं क्या समझता था, ये आएगा पकड़ेगा ये करेगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अभी तो समझ गया मैं, अभी तो मैं बड़ा हो गया, समझ में आ गया कि माँ मुझे केवल डराने के लिए बोलती थी क्योंकि मैं तो छोटा था, लेकिन अब मैं समझदार हो गया हूं। दुनिया में भी ऐसा ही होता है, पुराने जमाने में डर रहता था कि वो देख रहा है हजार आंखों से, इसलिए कोई भी गलत कर्म हो तो कहते थे नहीं बाबा भगवान देख रहा है, इतना परिवार चलाना है, जो भी करना है सच्चाई से सफाई से बहुत सही ढंग से करना है, क्योंकि ऊपर वाला तो कहीं भी से भी मुझे देख रहा है और मेरा खाता लिख रहा है, मेरा भाग्य लिख रहा है मेरे कर्मों को देखकर। और आज इस डिजिटल एज में, इस वातावरण में क्या कहते हैं, परिवार चलाना है, पाप कर्म तो थोड़ा करना ही होगा, कुछ तो थोड़ा गड़बड़, सच्चाई से नहीं चल सकते आजकल, थोड़ा तो कुछ करना ही होगा। तो आज हम ये नहीं समझते कि अरे ऊपर वाला देख रहा है, और समझते भी होंगे तो सोचेंगे भगवान समझ जाएगा कि कुछ तो मेरा प्रॉब्लम होगा, तो ये मान्यता आज चला लेते हम। तो ऋषि मुनियों ने जो कहा वो लोगों के अंदर एक डर पैदा करने के लिए कहा कि कोई गलत कर्म न हो, हर एक के अंदर एक अच्छाई देखे, जो पुराने जमाने में एक दूसरे के प्रति एक शुभ भावना रखते थे, एक प्यार था, एक विश्व बंधुत्व की भावना थी, तो वो भावना कायम रखने के लिए उन्होंने ये बात कही। बाकी ऐसा तो हम भी जानते हैं कि कोई बुरा कर्म करने वाला है, कोई कैसा है, कोई बहुत अच्छा है, कोई कैसा है, कोई साधारण है, क्या सभी के अंदर बैठा है भगवान? तो सब मनुष्य अच्छे हो तो स्वर्ग यहीं से शुरू हो जाए, कण कण में है तो सब जगह बहुत सुंदर दिखाई दे हमें, अगर कण कण में भगवान है तो, ये हम भी अंतर मन से जानते हैं कि ऐसी बात नहीं है, इसलिए तो हम ऊपर जाकर पुकारते हैं। हमारे घर में भी एक छोटी सी मूर्ति रखी होती है लेकिन फिर भी हम पास वाले मंदिर में जाते हैं कि नहीं यहाँ शायद सुन लेगी, फिर नहीं तो कहते नहीं यात्रा करके आते शायद वहां भी सुन लेगा भगवान, नहीं तो चलो और जगह जाते, कहाँ कहाँ जाते कि यहाँ तो भगवान सुन लेगा, कहीं तो सुनेगा। और जब भगवान नहीं सुनता है तो कहते कितना पुकारा जिंदगी निकल गई, कहाँ हो भगवान, मरने से पहले तो दर्शन दे दो, पता तो चल जाए आखिर कौन हो आप, कहाँ हो, दिख तो जाए। तो हम भी जानते हैं कि ये बात है। कई कहते हैं कि निराकार ही परमात्मा है। अब भगवान निराकार है, न आकार है, न रूप है, न नाम है, न धाम है, तो कैसे होंगे? अगर ये मान्यता सच है तो कैसे होंगे फिर? हम हर पल श्वास ले रहे हैं, कई बार डॉक्टर स्कैन करते कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा लंग्स में प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है, और व्यक्ति का श्वास कम हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, बहुत सारे सिलेंडर्स ऑक्सीजन के रखे होते हैं तो हमको पता है इसके अंदर ऑक्सीजन है। आज इस सुंदर प्रकृति में हम आए तो हम बहुत फील करते कि बहुत सुबह सुबह उठकर बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है। एक चित्रकार को अगर एक तूफान का चित्र बनाना हो तो भी वो बना देता है, जहां झाड़ हिल रहा है, पत्ते गिरे हुए, तो हवा जहां तूफान मचा रही है उसका चित्र वो बना देता है। और कोई बहुत शांत चित्त चेहरा बनाना हो या स्थान बनाना हो तो भी वो उसको बहुत अच्छी तरह से रूपायित कर देता है। तो हवा जो दिखती नहीं उसको भी हम चित्रित कर सकते। तो कोई भी चीज जो दिखाई नहीं देती पर उसका नाम है, रूप है, उसको हम फील कर रहे हैं कि हाँ बहुत ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ ज्ञान सरोवर में आके बहुत ऑक्सीजन मिल रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो जो चीज दिखाई नहीं देती हम फील कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं, साइंटिस्ट ने उसको नाम भी दे दिया, रिसर्च भी कर दिया, हमारे शरीर पर भी रिसर्च करते, वो ऑक्सीमीटर में हाथ उंगली लगाएंगे इतना ऑक्सीजन है, कितना फटाफट आइडेंटिफाई कर दिया, एक दो मिनट में तुरंत पता चल जाता है। तो जो चीज दिखाई नहीं देती उसका भी नाम है, रूप है, कुछ है ना अस्तित्व। तो परमात्मा का भी रूप है, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। इसीलिए हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है, एक ज्योति का आकार बना दिया है जिसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, अर्पित कर सके, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। जब राजा विक्रमादित्य को लाइट का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने पहला भारत में मंदिर स्थापन किया, सोमनाथ का मंदिर, और वो लाइट के साक्षात्कार में उन्होंने वो दिव्य ज्योति स्वरूप आकार ज्योतिर्लिंग, जो हीरे सोने का बना था, पहला मंदिर। इंडियन हिस्ट्री अगर हम पढ़ते तो इस मंदिर की बहुत अच्छी कहानी बताते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने इसको 17 बार लूटा, पर राजा हर बार ठीक करता गया। 12 ज्योतिर्लिंग भारत भर में गाए हैं, जहां हम यात्रा करने जाते हैं, जो भी देवी देवताएं होकर गए हैं उनकी स्टेट वाइज पूजा होती है। जैसे नॉर्थ में श्री राम जी की पूजा, साउथ में वेंकटेश बालाजी की पूजा, आज कलकत्ता में दुर्गा पूजा, काली पूजा होती है, महाराष्ट्र में, पुणे में, बंबई में खास गणेश जी की पूजा होती है, तो स्टेट वाइज पूजा, तमिलनाडु में मुर्गन देव की पूजा होती है। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग की पूजा भारत भर में है। नॉर्थ में देखेंगे तो अमरनाथ, अमर बनाने वाला नाथ, साउथ में देखेंगे तो रामेश्वरम, वहां स्टोरी बताते कि श्री राम को भी जब सागर पार करना था उन्होंने तीर चलाया, शिवलिंग की स्थापना की, आराधना की, पूजा की और तब स्टार्ट किया। इसी प्रकार गोपेश्वरम में श्री कृष्ण जी को शिव जी की पूजा करते हुए बताते हैं, तो इन्होंने भी उनकी आराधना की। उसी प्रकार जो है ईस्ट में काशी विश्वनाथ है, सारे विश्व का नाथ। इंडिया से अगर बाहर नेपाल में देखे तो पशुपतिनाथ, सभी पशु पक्षी मनुष्यों का नाथ है। तो इस प्रकार जो है 12 ज्योतिर्लिंग जहां भारत में शिव जी की पूजा होती है। और शिव मंदिरों की एक खासियत है, आप सभी ने भी देखा होगा, सुना होगा कि शिव मंदिर में जब शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उस लिंग को द्वार से नहीं लेके जाते हैं, ऊपर गुंबज से उतारा जाता है, तब तक वो गुंबज की जगह खाली रखी जाती है, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब फिर गुंबज तैयार करते हैं, अर्थात ऊपर से अवतरित होने वाली शक्ति, जो आपको बताया कि जन्म मृत्यु के चक्र से परे है, जिनका अपना कोई वास्तविक देह नहीं, जो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसलिए वैसा आकार बताया है कि ऊपर से अवतरण, इसीलिए वो शिव मंदिर में उस प्रकार से उतारा जाता है। तो हम शास्त्र पढ़कर बहुत सारी बातों को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन हमने उस परमात्मा को या सत्य बातों को कहां तक समझा है, हम कहते हैं कि भगवान हर पल हमारे साथ है, तो ये बात तो बिल्कुल राइट है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है पर हर पल साथ है, और किसी न किसी के द्वारा हमको एक इंटीमेशन दे रहा है, मैसेज दे रहा है। एक बार एक गांव में ना बच्चा होता है, गांव में बाढ़ आ जाती है और बच्चा और माँ रह रहे होते हैं, तो माँ बाढ़ में ना कहीं बह जाती है, अलग हो जाती है, बच्चा कहीं बह के दूसरे गांव में चला जाता है। अब वो माँ के हाथ में जो गठरी होती है ना, वो बच्चे के पास चली जाती है, और वो गठरी में कुछ इम्पोर्टेंट सामान होता है, उसमें ये फैमिली का एक छोटा सा फोटो होता है। अब बह बह कर वो बच्चा कहाँ दूसरे गांव में चला जाता है, और फिर गांव वालों को मिलता है, छोटा बच्चा होता है, कहता है मेरी माँ है, तो बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन माँ को ढूंढ नहीं पाते, फिर वो गांव में ही वो पल बढ़कर बड़ा हो जाता है। बहुत समय के बाद है ना, कोई एक विजिटर उनके गांव में आता है, और ये बच्चा अभी बड़ा हो गया होता है, इसके घर में विजिट करने आता है, फोटो फ्रेम रखी होती, देखता है तो कहता है यही चेहरे वाली लेडी है ना, वो तो हमारे गांव में रहती है, बहुत साल पहले ना वो अचानक बाढ़ हुई थी ना, उस साल में वो आ गई थी। तो अब वो बच्चा क्या करेगा, आप बताइए, बताइए क्या करेगा, जाएगा देखने। कौन कौन समझते जाएगा, सभी? और कौन समझते नहीं जाएगा, नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा भाई जी, बताइए, अभी बहुत साल हो गया, अभी नहीं चाहिए माँ, ऐसा? अभी क्या करेंगे, बचपन में जरूरत थी, अभी क्या, अभी तो मैं बड़ा हो गया, अभी नहीं चाहिए, ऐसा समझेगा? एक बार जाके देखेगा तो सही, कंफर्म तो करेगा कि सचमुच है कि नहीं, कंफर्म करेगा कि नहीं, बताइए। अच्छा ठीक है, कंफर्म करेगा। तो आज तक जिन चित्रों को हम घर में रख के पूजा कर रहे थे, जिन मूर्तियों को पूजा कर रहे थे मंदिरों में जाकर, कोई कहे कि ये परमात्मा तो इस धरती पर आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे देखेंगे? पक्का पक्का जाएंगे, कंफर्म करेंगे? तो आप कौन से स्थान पर आए हैं आज, कौन से स्थान पर आए हैं? बराबर स्थान पर आए हैं, देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कि आज तक जिन जिनको हम अभिव्यक्त भावनाएं रख रहे थे, सचमुच वो है हमारी पहुंची। तो इसीलिए परमात्मा को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या इन चीजों में परमात्मा है, है क्या, समझें? दुनिया में शिवजी और शंकर जी को एक मान लिया गया है। शिवजी को कहते हैं सदा सर्व का कल्याण करने वाला दाता, सदा कल्याणकारी, और शंकर जी के लिए कहते हैं तीसरी आंख खुलेगी तो विनाश हो जाएगा, तांडव नृत्य करेंगे तो विनाश हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा। हम हमेशा ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शंकराय नहीं कहते, शिव रात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते। और एक बात कहते हैं कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और शिव बताइए परमात्माय नमः। बिल्कुल राइट बताया। तो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताएं नमः, शंकर देवताएं नमः, शिव परमात्माएं नमः, ये इटसेल्फ बताता है कि ये देवताएं हैं और ये परम आत्मा है, इनसे ऊपर है। शंकर जी को ध्यान अवस्था में बताते हैं, तपस्या करते हुए कहते हैं उनकी तपस्या को विघ्न नहीं डाला जाता था, तो हमेशा ध्यान मुद्रा में। तो किसका ध्यान कर रहे, कोई ऊपर शक्ति है जिसको देख रहे, जिससे चाहना कर रहे, या मन लगा रहे, एकाग्र कर रहे? तो शंकर जी पुत्र है और शिव परमात्मा है, इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है और वो शिवलिंग का महत्व है। अगर भारत से थोड़ा सा आगे जाए ना, इस्लाम धर्म को अगर हम देखें, तो वहां मक्का में एक पवित्र पत्थर है जिसको काबा कहते हैं, संगे अश्वत कहा जाता है। और कहते हैं कि जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उनकी स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो आसमान से एक पत्थर गिरा और उसको स्थापित कर दिया गया। और कहते हैं जीवन में एक बार तो उस पवित्र पत्थर का दर्शन करना चाहिए, इससे हर साल हज यात्राएं निकलती है। और उनकी हज यात्रा में कड़ी तपस्या होती है, बहुत कड़ी तपस्या करते हैं। और कहते हैं कि वहां पहुंचकर उस पवित्र पत्थर का दर्शन करके सारे पाप धुल जाते हैं, उस पत्थर को चूमते हैं और 7 बार परिक्रमा करते हैं। हिंदू धर्म में 7 बार परिक्रमा होती है और एक मक्का में होती है, बाकी कोई मस्जिदों में नहीं होती। और 7 बार परिक्रमा करने के बाद अंत में वो एक लाइन बोलते हैं, वो लाइन बोले बिगर उनकी हज यात्रा कभी पूरी नहीं होती। वो कहते हैं कि हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो। नूरे इलाही, नूर, नूर माना प्रकाश, लाइट। तो किसी ने ज्योतिर्लिंगम कहा, किसी ने नूर कहा। हम मंदिर में जाते हैं, आरती स्वीकार करते हैं, बच्चे को भी देते हैं आरती की। आज संध्या के समय घर में ट्यूबलाइट ऑन करते तो नमस्कार करते, वो ट्यूबलाइट क्या देने वाला है? 24 घंटा ट्यूबलाइट था तब नमस्कार नहीं किया, लेकिन जब ट्यूबलाइट ऑन किया तो नमस्कार किया। अर्थात उस प्रकाश के आगमन का महत्व है कि प्रकाश आया घर में, माना एक शक्ति आई। हम दीप जलाते हैं तो किसी ने प्रकाश कहा, किसी ने नूर कहा। क्रिश्चियन धर्म में देखें तो कहा जाता है कि मोसेस जब माउंटेन चढ़ रहे थे तो वहां उनको 2 10 कमांडमेंट्स 2 पत्थरों में मिले, और उस वक्त उनको एक अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ और उनके मुंह से निकला यहोवा, अर्थात द सुप्रीम लाइट। जीसस क्राइस्ट ने क्लियर लिखा है कि गॉड इज लाइट एंड वी आर द सन ऑफ लाइट। उन्होंने अपने आप को सन ऑफ गॉड कहा, और इसीलिए जब उनको क्रूसीफायर कर रहे थे, क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, तो उनके मुंह से शब्द निकले कि हे भगवान, हे प्रभु, इन सबको क्षमा करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ईश्वर को क्षमा करने के लिए कहा। वेटिकन सिटी जो रोम में है, जहां पोप रहते हैं, वहां किसी मनुष्य का सिंबल नहीं है, व्यक्ति का आकार नहीं है, लेकिन वहां अखंड ज्योति का सिंबल है। तो गॉड इज लाइट, किसी ने लाइट कहा, किसी ने प्रकाश कहा, किसी ने नूर कहा, पर है वही शक्ति जो सुप्रीम है, और वो किसी न किसी के द्वारा मदद करता है, भक्ति काल से मदद कर रहा है। पर इस घोर कलयुग के समय जहां धर्म की ग्लानी हो रही है, तब परमात्मा का अवतरण हो चुका है। एक बार है ना, एक पुजारी मंदिर में बैठे थे, और मंदिर कैसा था, बहुत ऊंचे पहाड़ी पर था, काफी ऊंचे थे मंदिर था, और मंदिर में वो बहुत श्रद्धा से पूजा करते थे, वहीं उनकी कुटिया थी, वो रहते थे। अचानक एक बार उस गांव में तूफान आ गया, बहुत जोरदार बारिश, और धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। पास में गांव के थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा डैम था, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि डैम को हमें ओपन करना पड़ेगा, तो आप सभी शिफ्ट हो जाओ नजदीक के गांव में। अब पानी तो, तूफान तो बढ़ रहा था, बारिश तो बढ़ रही थी, तो सबसे पहले एक छोटी छोटी नाव आने लगी और सब रेसिडेंट जाने लगे। एक भक्त था जो हमेशा मंदिर में जाया करता था, उसको पुजारी के प्रति बहुत श्रद्धा थी, तो फटाफट वो पहाड़ चढ़कर पुजारी के पास गया और कहा कि घर खाली करने को बोला है, चलिए आप मेरे साथ चलिए। पुजारी कहते नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, भगवान मुझे कुछ नहीं होने देगा। बहुत कहने पर भी वो मना करता है तो भक्त चला जाता है। फिर डैम को ओपन कर दिया जाता है, फिर एक बड़ी नाव आती है और जो लोग बह रहे होते हैं बचाती है, सामान उठाती है, और पानी तो अभी पहाड़ी के ऊपर तक चला जाता है और आंधी तूफान चल रहा होता है, सब टूट फूट रहा होता है। धीरे 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 जिस पहाड़ी पर मंदिर होता है वो पहाड़ भी टूटने लगता है और धीरे धीरे मंदिर धंसता जाता है नीचे, पानी का लेवल ऊपर उड़ जाता है, अब पुजारी जहां बैठे होते हैं घुटने तक पानी आ जाता है। फिर एक बहुत बड़ी जहाज आती और फिर पुजारी को बोलती चलो चलो आओ, पुजारी इशारे में बोलता है नहीं मेरा भगवान बैठा है अब जाओ। लास्ट में इधर तक पानी हो जाता है, एक सर्वे हेलीकॉप्टर घूम रहा होता है, वो देख लेता है कि अभी तो पानी पूरा डुबो देगा मंदिर को भी, तो नीचे आता है वो हेलीकॉप्टर और पुजारी को कहता है रस्सी फेंकता हूं, एक व्यक्ति को लेके भेजता हूं, आप आ जाओ। पुजारी कहता है मैं नहीं आऊंगा, आप मेहनत मत करो, जाओ, मेरा भगवान बैठा है, मुझे विश्वास है वो बच जाएगा। और ऐसे करते करते हेलीकॉप्टर भी चला जाता है, पानी तो ऊपर चढ़ जाता है और पुजारी जी ओम शांति। फिर भगवान के द्वार पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं, भगवान बोलते क्या हुआ बेटा, बोलते अरे क्या हुआ पूछ रहे हैं, सबको बचा लिया गांव वालों को और मैं लास्ट तक आपका भक्त, कितनी पूजा करता था, आपके ऊपर विश्वास रख के बैठा था, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया, जवाब दो, सारे गांव वालों को बचाया। तो भगवान मुस्कुरा के कहते बेटा गांव वालों ने मेरी सुन ली, तू कहां सुना, मैं पहले तेरे लिए बोट भेजा, फिर तेरे लिए जहाज भेजा, फिर लास्ट में मैंने हेलीकॉप्टर भेजा तो भी तुम आए नहीं, तो मैं क्या करूं। तो ऐसे भगवान भी क्या कर रहा है, हम सभी को कहां कहां से मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है, हमारे लिए बहुत सारे साधन भेज रहा है कि बच्चे आओ, अब मेरे पास आओ, मुझे पहचानो, मैं कैसे कैसे मदद कर रहा हूं, देखो। तो इस प्रकार जो है भगवान किसी न किसी रीति से हमें मदद करते हैं, क्योंकि इस वक्त इस कली काल के समय वो इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। गुरु नानक जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है कि परमात्मा जो एक ओंकार अलंकार सत नाम निर्वैर निराकार अकाल मूरत कर्ता पुरुष, बहुत सुंदर महिमा लिखी है और कहते हैं कि इसीलिए गुरु गोविंद जी भी शिव जी की पूजा उन्होंने भी की थी। अगर हम जैन धर्म को देखें तो 24 तीर्थंकर बताया जाता है और सबको ध्यान मुद्रा में बताते हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? दिवाली के दिन जब महावीर जी का निर्वाण दिन मनाते हैं तो कहते हैं जैसे आप शिव धाम में गए ऐसे हमें भी अच्छी गति प्राप्त हो जाए। तो कौन सा धाम, कौन सी गति की बात करते हैं? जब पारसी लोग ईरान से भारत आए थे तो फायर लेकर आए थे और इसलिए उनका फायर टेंपल होता है जहां वो भी अग्नि को मानते हैं। तो ये परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, जो गुणों में अनंत है, जिनका अपना देह नहीं है। आज विज्ञान भी रिसर्च कर रही है, साइंटिस्ट भी कहते देयर इज सम सुपरनेचुरल पावर देयर, पर वो कौन सी पावर है, रिसर्च कर रहे हैं, एक ऐसी वाइब्रेटिंग मशीन बनाई है जो वाइब्रेशंस को कैच करती है। कहते हैं ये ज्योति आकार के पास जब हम इस वाइब्रेटिंग मशीन को रखते हैं तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती है, क्योंकि इस आकार में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है। और जब हम कनेक्ट हो जाते हैं उस परमात्मा से तो हमें बहुत सारी शक्ति मिलती है। एक बार एक भिक्षु राजा के पास कुछ मांगने गया, क्योंकि वो राजा ऐसा था ना, सुबह सुबह के समय दान पुण्य करता था, और जो भी उसके द्वार पे आए सारा दिन वो उसे खाली हाथ नहीं जाना जाने देता था। तो राजा के पास आया, तब द्वार सुबह सुबह का समय था। द्वारपाल ने कहा राजा भक्ति में है, भगवान को याद कर। तो कहता है कि मैं जाकर पीछे बैठ सकता हूं? तो ये भिक्षु ये भिकारी जाके पीछे बैठ गया मंदिर में जहां राजा पूजा कर रहा था। पूजा समाप्त होने पर राजा ने कहा हे भगवान मुझे इतना दे दो, इतनी मेरी झोली भर दो कि सारा दिन जो भी मेरे द्वार में आए मैं उसको दे सकूं। और जैसे ही भिखारी ये सुनता है तो सोचता है कि अच्छा राजा इनके पास से लेता है और हमको देता है सारा दिन, तो क्यों ना मैं भी राजा की तरह पूजा करूं, मैं भी ले लूं, तो मैं भी राजा जैसा बन जाऊंगा, मैं भी दूसरों को दे सकूंगा। वो दूसरे दिन से वो भी भक्ति शुरू करता है। तो ऐसे आज तक हम कहां कहां कनेक्शन जोड़ रहे थे, अब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। और जब हम उस पिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत सारी शक्ति हमें मिलती है। और ऐसे हर धर्म वालों ने जब इस ज्योति आकार की पूजा की तो उन्हें वो शक्ति की महसूस की, जिसको उन्होंने अलग अलग रीति से वर्णन किया। इसलिए परमात्मा वो शक्ति है जो सर्वधर्म माननीय है। एक बचपन में स्कूल में ना हमने एक कबूतर की स्टोरी सुनी थी, जब हम 9th या 10th स्टैंडर्ड में थे, तभी हमको समझ में नहीं आई स्टोरी, लेकिन बड़े होते होते उस स्टोरी का अर्थ समझा, पढ़ी तभी थी लेकिन उसका अर्थ अभी समझा। वो स्टोरी ऐसी थी कि एक बार है ना, एक कबूतरों का एक बहुत बड़ा झुंड होता है जो बरसों से मंदिर में रह रहे होते। कबूतर कैसे गुंबज में रहते हैं ना अंदर, तो ऐसे रह रहे होते बहुत सारे कबूतर होते हैं। अब क्या होता है, वर्षों से रह रहे होते हैं, बहुत समय के बाद उस मंदिर का ना एक विशेष दिन आने वाला होता है। तो जो भी मंदिर के ट्रस्टी होते हैं मीटिंग करते हैं, सोचते हैं मंदिर को रिनोवेट किया जाए अच्छे से। तो सबसे पहले बांबू खड़ा कर दिया जाता है। जैसे ही बांबू खड़ा हो जाता है कबूतर लोग मीटिंग करते हैं, बोलते हैं क्या हो रहा है, कहते मंदिर का कोई उत्सव आने वाला है तो इधर रिनोवेशन चलने वाला है, अंदर भी काम चलेगा बाहर भी काम चलेगा। तो सारे कबूतर बोलते फिर हमारा क्या होगा, तो जो कबूतरों का लीडर होता है बोलता है टेंशन मत लो, देखते हैं थोड़ा सा माइग्रेट करना पड़ेगा, अपने सबको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ऐसे आसपास ढूंढने जाते हैं, 3-4 एक्टिव मेंबर होते हैं ना कबूतरों के, वो ढूंढने जाते हैं। तो ढूंढने जाते तो थोड़ी दूरी पर है ना एक बड़ा सा चर्च होता है जिसमें थोड़े से कबूतर पहले से रह रहे होते हैं। तो उनको बोलते हैं कि देखो हमारा मंदिर रिनोवेट हो रहा है, तो वो कबूतर बोलते ठीक है आ जाओ हमारे पास बहुत बड़ा चर्च है, बहुत जगह है। तो सारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं चर्च में। अब कुछ महीने अच्छे से गुजरते हैं, फिर 25 दिसंबर आता है, आने वाला होता है क्रिसमस। तो चर्च वालों को भी विचार आता है कि हम भी थोड़ा सा चर्च को शाइन कर दे, तो मीटिंग करते हैं और फिर वो लोग भी बांबू खड़ा करते हैं। और फिर कबूतर, ये तो बड़े समझदार होते हैं ना मंदिर वाले कबूतर, इनको अनुभव होता है, तो ये लोग है ना बोलते कि देखो अभी इधर भी काम चालू होने वाला है। तो जो चर्च वाले कबूतर मंदिर वाले कबूतर दोनों मीटिंग करते हैं, बोलते अब क्या करें, बोलते अभी दूसरा स्थान देखना पड़ेगा, अभी ज्यादा पॉपुलेशन हो गया, बड़ा सा कुछ चाहिए। तो आसपास ढूंढने जाते हैं, फिर दूर है ना थोड़ा दूर होता है एक बड़ा सा मस्जिद दिखता है, वहां थोड़े से कबूतर पहले से रह रहे होते हैं, तो उनको जाके बोलते हैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मंदिर में हुआ, अब चर्च में, वो बोलते कोई बात नहीं, हमारा मस्जिद तो बहुत बड़ा है और दो तीन है, आ जाओ सब लोग, तो सब आ जाते हैं, उधर सेटल हो जाते हैं। अब अच्छे से दिन गुजर रहे होते हैं, फिर क्या होता है, ईद आने वाली होती है। अब इन लोगों को लगता है हम भी थोड़ा दो तीन मस्जिदों को रिनोवेट करें, तो ये लोग भी मीटिंग करते हैं और क्या खड़ा करते हैं, बंबू खड़ा करते हैं। वेरी गुड, समझ गए आप। तो फिर अब सारे कबूतर तो समझदार हो गए, मंदिर वाले, मस्जिद वाले, चर्च वाले, सब लोग आपस में मीटिंग करते अब कहां जाए। उसमें से एक बुजुर्ग होता है, वो जरा अनुभवी होता है, बोलता है ठहरो मैं जरा देख के आता हूं, हमारे मंदिर का काम हो गया होगा अभी तक। तो जाके देखता है तो मंदिर का काम होता है, मंदिर भी एकदम रिनोवेट और फंक्शन भी पूरा होता है, और थोड़े से कबूतर उधर रहना चालू भी कर देते हैं और बहुत सुंदर बन जाता। कहते हैं वैसे तो हमारा मंदिर थोड़ा छोटा है लेकिन चलेगा, हम सब समा जाएंगे, आ जाओ। तो सारे चर्च वाले, मस्जिद वाले, मंदिर सब आ जाते, इधर रहने लगते और बहुत मजे से, क्योंकि अभी वर्षों तक कोई हमको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अब एक दिन है ना, एक छोटा सा कबूतर नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे आता है और उसको सारा व्यू दिखता है। फिर वो देखने लगता है और मम्मी को पूछता है, मम्मी ये लोग कौन है जो इधर अपने मंदिर में आते हैं और वो लोग वहां नहीं जाते, कुछ लोग हैं जो ये देखो देखो कैसा ड्रेस है, ये लोग चर्च में जाते हैं और कुछ लोग हैं जो वो मस्जिद में जाते हैं, तो मम्मी सब लोग हमारे पास क्यों नहीं आते, सब लोग उधर क्यों नहीं जाते। तो कबूतर कि मम्मी बोलती है, बेटा ये लोग हिंदू धर्म वाले, देखो सिर पर पल्लू ओढ़ा है, थाली मिली है, ये सब इधर आते हैं मंदिर में पूजा करने, और वो जो है ना कैंडल लेके वो चर्च में जाते हैं, और वो जो है जो बुरखा पहने वो मस्जिद में जाते हैं, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है और वो हिंदू है। तो कबूतर बोलता है, लेकिन हम लोग जब मंदिर में थे तो भी हम कबूतर थे, जब हम लोग माइग्रेट होके चर्च में गए तो भी हम कबूतर ही रहे, और जब हम मस्जिद में गए तो भी हम कबूतर थे, वो लोग भी कबूतर थे, और जब हम सब मिलके मंदिर में आए तो भी हम कबूतर ही है, हम क्यों नहीं चेंज हुए। तो मम्मी बोलती, बेटा वो लोग नीचे रहते धरती पर, हम गुंबज में रहते, तो हमारे थॉट्स ज्यादा एलिवेटेड है, इसीलिए हम कबूतर ही है और वो लोग नीचे रहते हैं, तो उनके इतने एलिवेटेड थॉट्स नहीं है। तो ये हमने स्कूल में सुनी थी स्टोरी, पर हमने इसको समझा नहीं। आज हम समझते हैं कि हमें भी जरूरत है अपने थॉट्स को एलिवेटेड करने की, क्योंकि हम सब कौन है, हम सब कौन है, हम सब कौन है, हिंदू मुस्लिम ईसाई है, या हम सब कौन है, प्रकाश रमेश है, कि हम सब कौन है, हम सब आत्मा है। अरे वाह, कबूतर से भी होशियार हो गए। और हम सब का पिता कौन है, परमात्मा है। फिर चाहे हम कोई भी धर्म के हो, लेकिन हम कौन हैं, हम एक प्योर सोल है। अगर हम ऐसा सोचने लगे थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां कोई बात स्वीकार नहीं करनी है, जज करना है। आप सभी कौन हो, बहुत बड़े जज बैठे हो, तो आपको जज करना है, स्वीकार नहीं करना है। तो थोड़ी देर के लिए अगर सोच ले कि मैं एक प्योर सोल हूं, सारे प्योर हैं, घर में रहने वाले भी प्योर हैं, आसपास है, मैं जिस कमरे में अभी ठहरी हूं वो भी सब प्योर है, और मेरा पिता भी सुप्रीम सोल प्योर, जो मुझे शक्ति दे रहा है, जो मुझे प्यार करता है। अगर मैं कहूं कि तू प्यार का सागर है, तो वो प्यार देना शुरू करता है। अगर मैं कहूं कि भगवान आप शांति के सागर है, तो तुरंत मेरे मन को शांत कर देता है। अगर मैं कहूं कि भगवान आप विद्या के दाता हो, ज्ञान के सागर हो, तो मेरी आंतरिक बुद्धि को मेरे सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे। आप देखो ऐसे याद करो उस दिव्य बुद्धि दाता को, सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे। तो दो मिनट के लिए हम अगर ये संकल्प करें तो कितनी एनर्जी अंदर जनरेट हो जाती है, कितना हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। और अगर नित्य हम अभ्यास करें रोज कि मैं कौन हूं, जैसे ये माइक एक इंस्ट्रूमेंट है, मुझे इससे कुछ नहीं करना है, बोलना है चले जाना है, ऐसे ये मेरा बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, मुझे इसको यूज करना है, पर मैं कौन हूं? मैं ओरिजिनली एक प्योर सोल हूं। और जिस भगवान को मैं याद कर रही थी आज वो इस धरती पर आ गया, धरती पर आ गया, वो मेरा पिता परमात्मा है। तो जब हम इस प्रकार याद करते हैं कनेक्ट हो जाते हैं हम उस परमात्मा से। दुनिया में कहा जाता है कि परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। अब ब्रह्मा जी को दुनिया में दाढ़ी मूछ वाला बताते हैं, तीन मुख चार मुख पंचमुखी ब्रह्मा बताते हैं। यहां जो ब्रह्मा बताया जाता है वो साधारण वृद्ध पुरुष बताया जाता है। अब भक्ति में देवी देवताओं का बहुत सुंदर चित्र बताया जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी को ही दाढ़ी मूछ क्यों दिया है? क्योंकि ये अनुभवी बुजुर्ग तन की निशानी है। तीन मुख क्योंकि वे ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है, चारों दिशाओं में ज्ञान देते। तो आज ब्रह्मा जी को तीन मुख चार मुख दिया जाता है। रियलिटी में तीन मुख दो मुख हो तो कहेंगे एबनॉर्मल है, एक उंगली भी ज्यादा होती है ना तो कहते हैं डिफरेंट है कुछ। तो देवी देवताओं को दो हाथ दो पैर ही है, पर वो जो अलंकार दिए हैं वो एक शक्ति की निशानी है। इतनी भुजाएं दी है वो शक्ति की निशानी है, पर थे तो वो दो। कई बार देवी देवताओं के कुछ टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं तो दिखाते ना वो देवी तो ऐसी है, लेकिन जब कुछ काम है तो सारे अलंकार प्रकट हो गए। मतलब जब कार्य करना है तो मेरी शक्ति को मैं डेवलप कर रही हूं अपने अंदर, वो शक्ति को जागृत कर रही हूं, वो अलंकारों को कर्म में यूज कर रही हूं। तो उसी प्रकार जो है ये ब्रह्मा जी का अनुभवी तन लिया परमात्मा ने और वो अपना दिव्य कार्य इस ब्रह्मा तन द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना कोई शरीर नहीं है, वो निराकार है, लाइट है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो हम अपनी बुद्धि को उस परमधाम में केंद्रित करते हैं। यहां आपको समय समय पर मेडिटेशन कराया जाता है। अब कल जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन होगा ना 4 से 4:30, उसमें भी आपको ये अनुभव कराएंगे कि कैसे हम बॉडी से कुछ देर के लिए डिटैच हो जाए और उस ब्रह्म महतत्व, जो नाम आपको पसंद हो वो नाम से आप याद करना, आपको अनुभव होगा। अगर आपने आपको शांति चाहिए याद करो मैं शांति धाम में जा रहा हूं, अगर आपको कुछ देर के लिए डिटैच हो जाना है तो आप याद करो मैं परे उस परम पवित्र धाम में आ गया हूं, और वो प्योरिटी को आप फील करेंगे, उस दिव्य लोक में पहुंच गया हूं, उस निर्वाण धाम जहां वाणी को विराम। तो कुछ देर के लिए हम थोड़ा सा डिटैच फील करते अपने आप को, जैसे कभी कोई बात गहरी सोच वाली बात में हम डूब गए हैं तो पंखा लगा हो नहीं लगा हो पानी आके चला गया पता भी नहीं चलेगा, फिर कहते मैं गहरी सोच में था कुछ पता ही नहीं चला मुझे। माना कुछ देर के लिए आप अपनी सोच में इतने गहरी रीति से इन्वॉल्व हो गए कि आप बॉडी से डिटैच हो गए, आप थे बॉडी में सोच रहे थे पर आप डिटैच हो गए, इसलिए पंखे की हवा को आपने फील नहीं किया, पानी की आवाज को आपने फील नहीं किया। तो उसी प्रकार से जैसे हम कोई बात में खो जाते हैं मन एकाग्र हो जाता है, उसी प्रकार मेडिटेशन में हम कुछ देर के लिए इस बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और फील करते हैं कि हम उस ऊंचे स्थान पर पहुंच गए और वहां कौन है, दिव्य प्रकाश में परमात्मा है और वो मुझे एनर्जी दे रहा है, तो मैं एक लाइट, परमात्मा एक लाइट और बहुत शांति, बहुत शक्ति। और जो भी मेरे मन में था, उलझन थी, कमजोरी थी, टेंशन था या कुछ संकल्प था, जो भी था, सब पहुंच गया उधर और मैं एकदम लाइट हो गई, एकदम हल्की हो गई और बहुत सारी एनर्जी मुझे मिली, तो मैं चार्ज हो गई। देखिए, मोबाइल को कहते हैं कि जब स्विच ऑफ करो तो जल्दी चार्ज होता है, तो ऐसे कुछ देर के लिए हम स्विच ऑफ हो जाते हैं और उस परमात्मा को देखने की कोशिश करते हैं, जो आपको बताया कि वो त्रिनेत्री हैं, महिमा में बताया कि वो सर्वज्ञ है। तो क्यों सर्वज्ञ है? क्योंकि त्रिनेत्री है। तो ये तीसरा नेत्र ना, जैसे ही आज सुबह का लेसन आपको मिला, तो त्रिनेत्री माना तीसरा नेत्र जागृत हो गया। तो आप सभी भी मास्टर त्रिनेत्री बन गए, तीसरा नेत्र जागृत हो गया ना, हो गया कि नहीं? अभी कितना अच्छा जवाब दिया आप सभी ने, दिया था। तो चलिए कुछ देर के लिए हम बहुत अच्छी तरह से आज जिस सर्वशक्तिवान को हमने पहचाना, हमने जाना, उनके सत्य परिचय को समझा, उस परमात्मा को हम याद करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे कि परमात्मा को नीचे बुलाएंगे? क्या करेंगे, क्या पसंद करेंगे, बताइए? ऊपर जाना है कि उनको नीचे बुलाना है? किस किस को ऊपर जाना है? अरे बाप रे, ऊपर चले जाएंगे और नीचे परमात्मा को नीचे बुलाना है? नीचे वाले भी है, ऊपर वाले भी है, क्या करेंगे? चलिए ठीक है, आज इस स्थान पर बैठकर वो प्रभु पिता को अपने सामने फील करेंगे और कल सुबह अमृत वेले जब आप आएंगे 4 बजे, तो हम सभी बॉडी से डिटैच होकर ऊपर जाएंगे, तो दोनों हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए, लेकिन यहां रहते हुए भी कुछ देर के लिए बॉडी से डिटैच, मन को एकाग्र कर लीजिए और धीरे धीरे फील कीजिए कि मैं कौन हूं। मैं एक लाइट, एक प्रकाश, एक प्योर सोल। देखिए अपना खुद का चेहरा जैसे आईने में देखते हैं और ब्रुकुटी के मध्य में एक पॉइंट ऑफ लाइट को फील करें। ये मेरा चेहरा, ये मेरा स्वयं का चेहरा और ये आंखें, भ्रुएं और मध्य में जिस स्थान पर हम टीका लगाते हैं, वहां ही मैं बैठी हूं। मैं कौन? मैं एक प्योर सोल, एक पवित्र आत्मा। करिए अपना दर्शन, करिए प्रकाश स्वरूप, लाइट स्वरूप, मैं दिव्य सितारा। जितनी लाइट मैं आत्मा, उतना अब मेरा शरीर भी लाइट, हल्का हो गया है। शरीर में रहते हुए मन एकाग्र है और मैं स्वयं का दर्शन कर रही हूं। इस लाइटनेस को फील कर रही हूं, अपने प्योर वाइब्रेशंस को फील कर रही हूं। बहुत हल्का, सब कुछ एकदम आसान लग रहा है, इजी लग रहा है। लाइटनेस आता जा रहा है, एक गुड फीलिंग आ रही है खुद के लिए, एक अच्छी भावनाएं जागृत हो रही है, कितना सुंदर मेरा स्वरूप है, आज मेरा तीसरा नेत्र जागृत हो चुका है और इस नेत्र से, इस मन बुद्धि से मैं अपने आप का दर्शन कर रही हूं। अब इसी तीसरे नेत्र से सामने देखें एक दिव्य लाइट, सर्वशक्तिवान महाज्योति स्वरूप परम पिता शिव परमात्मा, जिनका सत्य परिचय आज मुझे मिला। अंतरात्मा अब पूर्ण रूप से जागृत है और इस तीसरे नेत्र से उस प्रभु पिता को देख रही है। परमपिता परमात्मा के प्योर वाइब्रेशंस, शांति के प्रकंपन अंतरात्मा को स्पर्श कर रहे हैं। और उस शांति को मैं फील कर रही हूं। अब मन और हल्का और प्योर बन गया है। जो कुछ मेरा अपना है, मेरी वास्तविकता है, वो सब मुझे दिखाई दे रही है। मैं दिव्य प्रकाश, प्योर आत्मा, परमात्मा से ये शांति के प्रकंपन रिसीव करती जा रही हूं। यहां बैठे हुए, इस तन में बैठे हुए मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूं और परमात्म दर्शन भी कर रही हूं। सारा बोझ, सारा तनाव, सारी कुछ बातें आज इस ज्योति स्वरूप परमात्मा के आगे रख दी है। अब मन और हल्का हो गया है, और हल्का हो गया। ओम शांति।